पिछले अध्याय में ये देखा कि रुचिका और सुधीर की सगाई में अयान और जोया आते हैं और वेदिका जोया को वेद के लिए सलाह देती है। समारोह में बच्चों के बीच झगड़ा होता है और वेद के मन में सवाल उठते हैं। रुचिका और सुधीर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फैसला करते हैं। वेद अवनी और मानवी को देखता है और शंका करता है। अयान भाइयों से मिलता है और बातें सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। माया और रैना वेद के ड्रिंक में नशीला पाउडर मिलाने की योजना बनाते हैं। रुचिका और सुधीर स्टेज पर जाते हैं और सारा जोया से चाचू के प्यार के बारे में बात करती है। इस अध्याय में रीना वेद को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन विफल रहती है। रुचिका और सुधीर रिंग पहनते हैं। माया वेद को जूस देने की कोशिश करती है लेकिन अवनी के कारण ये विफल हो जाता है। अवनी के साथ बातचीत के बाद वेद रैना से मिलता है जो मॉडलिंग के प्रस्ताव के बारे में बात करती है, लेकिन वेद मानवी के पास जाने का फैसला करता है। माया और रैना वेद को नशीला जूस पिलाने में विफल रहती हैं। शेखर मानवी को प्रपोज करता है और वेद इसे देखता है। नाउ नेक्स्ट। उसी वक्त वेद ने गौतम को फ़ोन मिलाया जो उसका असिस्टेंट था। गौतम आधी रात को नींद में आंखें मलते हुए उठा। कोई और फ़ोन होता तो वो कभी नहीं उठाता, लेकिन देर रात साहब का फ़ोन था तो उठाना ही पड़ा। कहिए सर, इतनी रात को क्या काम है, उसने बड़ी मुश्किल से कहा क्योंकि वो गहरी नींद में था। तुम पीछे गए थे मानवी के बारे में पता करने, है ना? हाँ सर, गया था। क्या हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसके साथ एक छोटी बच्ची भी रहती है। आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको उस बच्ची के बारे में जानकारी चाहिए। मैंने तो सिर्फ इतना बताया था कि वो यहाँ से जा चुकी है। अगर आप पहले ही कहते कि उसके बारे में जानकारी निकालनी है तो मैं निकाल लेता। वैसे उसे छोटी बच्ची की फ़ोटो मेरे फ़ोन में है। अब ज़्यादा बकबक मत करो, मुझे मानवी के पिछले 5 सालों की पूरी जानकारी चाहिए। और हाँ, तुम भी सुबह होते ही वहाँ पहुँच जाना। लेकिन अगर मैं आ जाऊँगा तो यहाँ का काम कौन देखेगा? तुम मेरे असिस्टेंट हो, ये भूल फै क्या? नहीं, याद है मुझे। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। मन ही मन वैसे भी पता था इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उधर वेद ऊपर खड़ा हुआ नीचे सभी को देख रहा था। शेखर तो वहाँ से चला गया था, मगर मानवी अब भी एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके साथ सीता खड़ी थी। और भी लोग मानवी से बातें कर रहे थे। ये सब देखकर वेद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुम क्या कर रहे हो, आ जाओ ना, बियर पीते हैं, रैना ने कहा। उसने बियर खोलते वक्त उसमें नशीला पाउडर भी मिला दिया था वेद की बॉटल में। वेद ने रैना की तरफ देखा। तुम जानती हो मेरा मूड बहुत खराब है, वो वहाँ चेयर पर बैठ गया। मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगी, बियर तो पियो, रैना ने हंसते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वेद वहां से खड़ा होने लगा। अब रैनू को लगा कि उसका पूरा प्लान मिट्टी में मिल गया है। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और वेद के हाथ में बॉटल देने लगी। थोड़ा सा तो पी लो, वेद ने बॉटल पर हाथ मारा और बॉटल नीचे गिर गई। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, अब और जोर मत डालो। वेद का गुस्सा हमेशा ऐसा ही था, जो वो चाहता था वही करता था। सामने वाले की उसे कभी परवाह नहीं थी। इस वक्त उसका मूड और भी खराब था। उसे गौतम पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने बच्ची की जानकारी उससे छुपाई थी। वेद को लग रहा था कि अवनी उसी की बेटी है, यही वजह थी कि वो इतना गुस्से में था। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी शक्ल मानवी से मिलती जुलती थी, वो मानवी जैसी ही प्यारी थी। लेकिन मानवी कितनी शांत स्वभाव की थी, ये बात वेद अच्छी तरह जानता था। अवनी का गुस्सा वो देख चुका था। जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेना चाहता हो, उसने रैना को वहां से भेज दिया और अब अकेला टेरेस पर बैठा था। उधर गौतम के फ़ोन में एक फ़ोटो थी जिसमें अवनी भी थी। ये तस्वीर उसे मकान मालिक और मालकिन से मिली थी। उन्होंने बताया था कि वहाँ तीनों, माँ, बेटी और रीता रहती थी। गौतम ने ये जानकारी वेद को देनी ज़रूरी नहीं समझी और इसलिए छुपा ली। उसने सिर्फ इतना कहा था कि मानवी कहीं चली गई है, क्योंकि उसे लग रहा था इतना बताना ही काफ़ी है। गौतम और वेद दोनों की आंखों से नींद गायब थी। मानवी की पूरी जानकारी पाने के लिए एक बात तो साफ थी, सुबह होने तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। वेद ये सोच रहा था कि मानवी ने कहा था कि वो अपनी एक फ्रेंड के पास जा रही है। सीधी सी बात है कि वही फ्रेंड उसके बारे में जानकारी दे सकती थी। जब गौतम ने उन तीनों की तस्वीर भेजी तो उसमें मानवी के साथ जो दूसरी लड़की थी वही रीता निकली। वेद ने उसे मानवी के पास खड़ा देखा था। अब जानकारी निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया था। वेद काफी देर तक टेरेस पर बैठा सोचता रहा। आधी रात के बाद वो उठा और कमरे में चला गया। उसे अगली सुबह की रिपोर्ट का इंतजार था। अगर रिपोर्ट से ये पता चलता कि मानवी, अगर अवनी सच में उसकी बेटी निकली, तो उसे क्या करना चाहिए, यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। आखिरकार वो थककर सो गया। अगली सुबह वेद के फ़ोन पर बार बार कॉल आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली और फ़ोन उठाया, क्योंकि वो बहुत लेट सोया था। क्या बात है भाई, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, दीपक ने कहा। चलो नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ, वेद ने कहा। दीपक बोला, दरवाज़ा तो खोलो भाई, हम लोग आपके दरवाजे पर खड़े हैं। वेद उठकर दरवाज़ा खोलता है। बाहर दीपक, सुधांशु और सुधीर तीनों खड़े थे। क्या बात है, आज सुधीर तो ज़्यादा ही खुश लग रहा है, वेद ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों अंदर आ गए। पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे, सुधांशु बोला। कोई सीरियस मैटर है क्या, वेद ने पूछा। किस बारे में, वेद ने सवाल किया। दीपक, जो सोफे पर आराम से बैठ गया था, बोला। पहले आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, ब्रेकफास्ट करते हुए वहीं पर बात करेंगे। वेद बाथरूम में चला गया और आधे घंटे में तैयार होकर नीचे लॉन में आ गया। लॉन में ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। सुबह बेहद खूबसूरत थी। सुबह का समय था। हेरिटेज होटल का लॉन ताजगी से भरा हुआ लग रहा था। चारों तरफ हल्की धूप फैली हुई थी, जिस पर रोज की बूंदें घास पर चमक रही थीं। हवा में गुलाब और रजनीगंधा के फूलों की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। पास ही फव्वारे से गिरती पानी की बूंदों की आवाज माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। लॉन के बीच में लंबे मेज सजाए गए थे, जिन पर हाई क्लास ब्रेकफास्ट का इंतजाम था। सफेद लिनन से ढकी मेजों पर सिल्वर क्रॉकरी और चमकते ग्लास रखे हुए थे। ब्रेकफास्ट में अलग अलग तरह के व्यंजन सजाए गए थे। गर्मा गर्म साउथ इंडियन डोसा, इडली और सांभर, ताज़ा बेक किए हुए क्रोसां, मफिन्स और पेस्ट्रीज, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स और फ्रूट सैलेड, कटे हुए ताज़ा फल, पपीता, तरबूज, अंगूर और अनार। साथ ही जूस काउंटर पर ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस और एप्पल जूस भरे जार रखे थे, और साइड में कॉफी मशीन से उठती ताज़ा ब्रू की खुशबू हर किसी का मन मोह रही थी। कई गेस्ट्स पहले से ही वहां बैठे आराम से ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई कॉफी की चुस्की लेते हुए हल्की सी गपशप में व्यस्त था। इसी बीच होटल स्टाफ ने एक अलग टेबल खाली कर दी, यहीं जहां पर मेहरा फैमिली के राजकुमार बैठने वाले थे। कुछ देर बाद वहां पर वेद, दीपक, सुधांशु और सुधीर साथ साथ लॉन में दाखिल हुए। सभी बेहद फ्रेश और उत्साहित दिख रहे थे। वेटर ने मुस्कुराकर उन्हें उनकी टेबल तक ले जाकर बैठाया। वेद ने एक नज़र पूरे लॉन पर डाली। उसकी आंखें बार बार चारों तरफ घूम रही थीं, मानो वो किसी को तलाश कर रहा हो। असल में वो मानवी और अवनी दोनों को ढूंढ रहा था, लेकिन वहां न तो मानवी थी और ना ही अवनी।
असल वजह ये थी कि टीम का स्टाफ पिछली रात बहुत देर तक जागा था। सुबह उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, इसलिए वे सब अभी तक उठे ही नहीं थे। इसी वजह से उनमें से कोई भी लॉन तक नहीं पहुंचा था। दीपक, जो वेद को ध्यान से देख रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भाई, आपकी नज़र किसे ढूंढ रही है? उसने हल्की सी शरारत भरे अंदाज में आंखें दरेरी। वेद ने तुरंत नज़रें हटाईं और गंभीर स्वर में कहा, मेरी छोड़, अब तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें?